इशिका अगली सुबह वसुधा से बात कर रही थी, तभी अचानक बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई दी। इशिका बाहर जाकर देखने लगी, तभी निवेदिता घबराई हालत में अंदर आई। निवेदिता कुछ बताने के बजाय इशिका को स्ट्रांग रहने का बोल रही थी, तो इशिका तो थोड़ा चिढ़कर कहा, सीधे सीधे बताओ निवेदिता, आखिर हुआ क्या है? निवेदिता ने धीमी आवाज में कहा, मैडम वो एक्चुअली आज मिस्टर नक्श राजवंश और आयशा सिंघानिया ने शादी कर ली है, वो प्रेग्नेंट है तो बाहर नहीं रहेगी और अब से यहाँ पर रहने के लिए आ रही है। इशिका को किसी से बात करने का मौका भी नहीं मिला और उससे पहले ही आयशा शादी करके भी आ गई थी। आयशा वहां आ गई थी तो जरूर अब वो इशिका के लिए नई प्रॉब्लम जरूर खड़ी करने वाली थी। इशिका को भी समझ आ गया था कि निवेदिता उसे सावधान रहने को क्यों बोल रही थी। वहीं शादी की न्यूज़ सुनकर वसुधा ने बिना किसी भाव के कहा, क्या फर्क पड़ता है, राजवंश विला में हर हफ्ते नए हाउस हेल्पर्स अपॉइंट होते हैं। निवेदिता ने सिर हिलाया और आगे कहा, एक और बात तुम्हें बताना भूल ही गई थी, उर्वशी मैडम ने कहा है कि वो कुछ दिन घर की जिम्मेदारियों से आराम पाना चाहती हैं, तो उनका काम आयशा मैडम संभालेगी। उन्होंने कहा है कि आपको या मिस सिंघानिया को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप आयशा मैडम को बोल सकते हैं। आयशा ने आते ही राजवंश फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहा, ये सुनकर इशिका ने भौंहें चढ़ाईं। इशिका ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, आयशा की मैनिपुलेशन पावर को मानना पड़ेगा, उर्वशी जैसी चालाक औरत उसकी बातों में आ गई और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वहीं पूरी बात सुनकर वसुधा ने सख्ती से कहा, मेरा काम करने के लिए तुम यहाँ हो और बाकी कुछ बड़ा करवाना होगा तो वो लड़का कर देगा, मुझे उस घर की नई बहू को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ, इशिका ने कहा और वहाँ से बाहर मेन विला की तरफ जाने लगी। इशिका कुछ आगे पहुँची थी कि उसे नक्श दिखाई दिया। आजकल नक्श को देखकर इशिका अनकम्फर्टेबल होने लगती थी, उसे यकीन नहीं होता था कि ये वही शख्स था जो कभी उसका दोस्त था। इशिका उसे इग्नोर करके आगे जाना चाहती थी, लेकिन नक्श तुरंत उसके पास आया और भौंहें चढ़ाकर बोला, यकीन नहीं होता इशिका सिंघानिया, तुम इस हद तक गिर सकती हो, शादीशुदा होने के बावजूद मेरे अंकल पर डोरे डाल रही हो। इशिका नक्श से उलझना नहीं चाहती थी, उसने नक्श की बात को अनसुना किया और आगे बढ़ने लगी। तभी उसके कुछ कदम बढ़ाने पर नक्श ने पीछे से कहा, क्या लगता है इशिका, मुझे जलाने के लिए ये सब हरकतें कुछ फ़ायदा करेगी, बदला ले रही हो ना तुम मुझसे? इशिका ने गहरी सांस ली और नक्श की तरफ पलट कर बोली, और तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है नक्श, तुमसे बदला लेने के लिए मुझे अभिमन्यु राजवंश के करीब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो। पता ही था कि तुम इस बात से इनकार करोगी, शर्म तो तुम्हारे मुंह पर है नहीं जो इतना सब कुछ करने के बावजूद अनजान बन रही हो, नक्श ने सख्त आवाज़ में कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और फिर इशिका की तरफ स्क्रीन करते हुए कहा, अब तुम ये कहोगी कि इस फोटो में तुम नहीं हो। इशिका उस फोटो को देखकर हैरान रह गई, वो कल रात की फोटो थी जब अभिमन्यु और इशिका बेड पर थे। हालांकि फोटो पर्दे के पीछे से ली गई थी तो इतनी नहीं थी, पर इशिका जानती थी कि उस वक्त बेड पर अभिमन्यु और इशिका ही थे। इशिका ने गुस्से से नक्श की तरफ देखकर कहा, तुम्हें ये फोटो किसने भेजी नक्श? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि ये तस्वीर छूटी नहीं है। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे चाचू के नीचे क्या कर रही थी, मुझे इस बात से लेना देना भी नहीं है, पर क्या तुम्हारा पति जानता है कि इस वक्त तुम एक अमीर आदमी को बहला फुसला कर उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत बनने की कोशिश कर रही हो? नक्श ने आंखें दिखाकर कहा। नक्श कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था, तो वहीं उसे इतने गुस्से में देखकर इशिका के चेहरे पर हंसी के भाव थे। उसने सिर हिलाकर कहा, अच्छा क्या तुम जानते भी हो कि मेरा पति कौन है? नक्श ने जवाब में कहा, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारा पति कौन है, वो जो भी हो ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम किसी और के साथ अफेयर करो, तुम एक घर तोड़ने वाली लड़की बन रही हो। नक्श ने देखा कि इशिका पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, तो वो उसे उकसाने के लिए आगे बोला, मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह निकली ना, उन्होंने सिंघानिया फैमिली को बर्बाद कर दिया और तुम मेरे चाचू के पीछे पड़ी हो, लगता है ये सब चीज़ें तुम्हें विरासत में मिली हैं। इशिका सिंघानिया तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, किसे फर्क पड़ता है? इशिका ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा। इशिका वहां से जाने को हुई तभी नक्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरे चाचा का पीछा छोड़ दो। और किस हक से तुम मुझ पर इतना हक जमा रहे हो नक्श राजवंश? इशिका ने जवाब दिया। नक्श और इशिका एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी आयशा ने उन्हें साथ में देख लिया। आयशा थोड़ा दूर से ही जोर से चिल्लाकर बोली, इशिका तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? आयशा ने जानबूझकर चिल्लाकर कहा था ताकि आसपास काम कर रहे हाउस हेल्पर्स का ध्यान उनकी तरफ जाए। उन सब ने देखा नक्श ने इशिका का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था। आयशा उनकी तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, तुम जानती हो ना नक्श हमेशा से मुझसे प्यार करता है, अब जब तुम्हें मिस्टर अभिमन्यु राजवंश के साथ रहना है तो तुम नक्श का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? कम से कम मेरी शादी तो बख्श दो। आयशा इशिका पर इल्जाम लगा रही थी। इशिका ने इधर उधर देखा तो सब उसे देखकर फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। वास्तव में वो सब इशिका के बारे में ही बात कर रहे थे। वो सब यही कह रहे थे कि इशिका नक्श को फंसाने की कोशिश कर रही है, तो कोई अभिमन्यु और उसके रिश्ते को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था। नक्श ने इशिका को जो फोटो दिखाई थी वो सब पहले ही देख चुके थे। वो इशिका को उस लड़की के तौर पर देख रहे थे जो आदमियों को अपने पीछे घुमाती है। उन सब की बातें सुनकर इशिका ने अपने मन में कहा,
इसका मतलब कल रात दादी ने अभिमन्यु के खाने में कुछ नहीं मिलाया था। दादी ऐसा कर ही नहीं सकती। ठीक है, वो हम दोनों को साथ लाने के लिए कोशिश करती रहती है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर ये किसी और का काम है जिन्होंने ये जानबूझकर किया है। ईशिका को समझ नहीं आया कि अभिमन्यु के खिलाफ ये साजिश कर कौन रही थी, आयशा या उर्वशी। ईशिका ने गहरी सांस ली और अपना हाथ नक्श के हाथ से अलग करके कहा, सबको सच बताओ नक्श, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया या यहाँ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की? ईशिका ने काफी आराम से नक्श से बात की थी और ये काफी वक्त बाद हुआ था। नक्श को वही पुराना वक्त याद आ गया और वो तुरंत नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं। ईशिका आयशा को जवाब देने ही वाली थी कि तभी आयशा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम नक्श के पीछे नहीं आई तो नक्श तुम्हारे पीछे आया था क्या? बहुत हो गया, मैं बड़ी दादी से बात करने के लिए जा रही हूँ। वो तुम्हें इस तरह इस घर में नहीं रख सकती है, उनके सामने तुम्हारा असली चेहरा आना जरूरी है, तभी वो तुम्हें इस घर से निकालेगी। आयशा की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर चमक आ गई। अगर ईशिका को इस घर से बाहर निकाल दिया जाता तो उसकी और अभिमन्यु के बीच सारे रिश्ते टूटने वाले थे और ऐसे में नक्श फिर से उसे अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकता था। नक्श ने अचानक ही तेज और सख्त आवाज में कहा, देखो ईशिका, ये तुम सही नहीं कर रही हो। अगर चाचू और तुम्हारे बीच में कुछ है तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने और आयशा ने शादी कर ली है? अब मैं आयशा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता।
ईशिका कुछ कह पाती उससे पहले आयशा उसका हाथ पकड़कर उसे वसुधा के विला में ले जाने लगी। नक्श भी वहां पर आ रहा था। आयशा ने तेज आवाज में कहा, कोई बात नहीं नक्श, आज इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा कि ये कैसे दादी की बीमारी का बहाना बनाकर इस घर की बहू बनकर बैठी है। इसे तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि अगर दादी गलत समझ रही हैं तो उनकी गलतफहमी को दूर करें, उल्टा ये तो चाचू के बेड तक पहुंच गई। बेहतर यही होगा ईशिका कि तुम खुद ही दादी को सब सच बता दो, वरना तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, नक्श ने कहा। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वसुधा निवेदिता के साथ बाहर आई। उन्होंने देखा नक्श और आयशा उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। वसुधा ने तुरंत नक्श पर चिल्लाते हुए कहा, सोच समझकर बात करो लड़के, ये तुम्हारी चाचा की पत्नी है और रिश्ते में तुम्हारी चाची लगती है, क्या तुम्हें रिश्तों का जरा भी लिहाज नहीं है? दादी आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरी आंटी नहीं है, नक्श ने सख्ती से जवाब दिया। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे क्या सच है और क्या नहीं? यही तुम्हारी आंटी है, वसुधा गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोली। फिर उसने निवेदिता की तरफ देखकर कहा, उस लड़के को फोन करो और अभी यहाँ बुलाओ, उसे कहो कि उसकी पत्नी को ये लोग परेशान कर रहे हैं। निवेदिता ने उसकी बात पर हामी भरी और एक तरफ जाकर जैसे ही अपना मोबाइल निकाला, नक्श ने उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, मिस निवेदिता, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, शाम को जब चाचू घर आएंगे तो मैं उन्हें सब समझा दूंगा, अभी इस लड़की को यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है, इसकी वजह से राजवंश फैमिली की इज्जत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप मिस सिंघानिया को ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, वो मिस्टर अभिमन्यु और दादी की मेहमान है, आपको मिस्टर अभिमन्यु के आने का इंतजार करना चाहिए और तभी कोई फैसला लेना चाहिए, हम उनके मेहमान को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, निवेदिता ने सख्ती से जवाब दिया। वो कोई मेहमान नहीं है, चाचू और इसकी फोटो पहले ही सब लोगों ने देख ली है, कंपनी की इमेज और स्टॉक्स पर इन सब चीज़ों का बहुत असर होता है, तुम पूरा मामला मुझे संभालने दो और बीच में मत बोलो, नक्श ने उसे डांटते हुए कहा। नक्श की बातें सुनकर वसुधा का गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो जोर से चिल्लाकर बोली, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि ये तुम्हारे चाचा की पत्नी है, फिर तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कर कैसे सकते हो? नक्श वसुधा के आगे कुछ बोल नहीं पाया। तभी उर्वशी अंदर आई। उसे पूरे मामले के बारे में पता चल गया था। उसने आंखों ही आंखों में आयशा को इशारा किया। इसी के साथ आयशा और उर्वशी ने जाकर वसुधा के एक एक हाथ को जबरदस्ती पकड़ लिया था। आयशा ने वसुधा को जबरदस्ती खींचते हुए कहा, दादी यहाँ बहुत ठंड है, आपको कमरे में चलकर आराम करने चाहिए। वसुधा की तबीयत के बारे में उर्वशी जानती थी, इसलिए वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, लेकिन आयशा तो वसुधा से नफरत करती थी। आखिर उन्हीं की वजह से ईशिका इस घर में रह रही थी और उसको उससे ज्यादा इज्जत मिल रही थी। आयशा ने बिना सोचे समझे सख्ती दिखाते हुए वसुधा का हाथ बिल्कुल कसकर पकड़ लिया, जिससे वो जोर से चिल्लाकर बोली, तुमने अभी अभी मेरा हाथ दबाया, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? दादी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपका हाथ मैंने बहुत प्यार से पकड़ रखा है, आयशा ने अनजान बनते हुए कहा। बाकी लोग इस बात की तरफ ध्यान ना दें, लेकिन ईशिका इग्नोर नहीं कर सकती थी। वो तुरंत वसुधा के पास आई और आयशा का हाथ उनके हाथ से अलग किया। उसने देखा वसुधा की बुढ़ी चमड़ी पर आयशा के कसकर दबाने की वजह से नीले निशान पड़ गए थे। ईशिका ने कुछ नहीं सोचा और आयशा की तरफ देखकर उसके गाल पर एक कसकर तमाचा लगा दिया। आयशा का चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था। ये दूसरी बार हुआ था जब ईशिका ने सबके सामने आयशा को थप्पड़ लगाया था। इससे पहले यूनिवर्सिटी में भी उसने उसे मारा था। आयशा कुछ कदम लड़खड़ाते हुए जानबूझकर जमीन पर गिर गई और अपना पेट पकड़कर बोली, ईशिका ये तुम क्या कर रही हो? आह मेरा बच्चा। नक्श जल्दी से दौड़कर आयशा के पास गया। उसे यही लगता था कि ये बच्चा उसका है, क्योंकि उसने आयशा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। आयशा को संभालते हुए नक्श ने ईशिका की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, ईशिका तुम ठीक तरीके से बात नहीं कर सकती, हर बार तुम्हें मारपीट करनी जरूरी होती है क्या? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो?
इशिका ने नक्श की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और वसुधा से कहा, दादी आप ठीक है ना? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो मेरा हाथ ही तोड़ना चाहती थी, वसुधा ने जवाब दिया। अचानक नक्श फिर से इशिका की तरफ बढ़ने लगा। इशिका ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा तो नक्श के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उसने आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड से तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग यहाँ खड़े होकर देख क्या रहे हो? चुपचाप इस लड़की को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। इशिका भी अब हरकत में आ गई थी। उसने तेज आवाज में कहा, मैं भी देखती हूँ कि कौन हिम्मत करता है। तुम लोगों को यकीन नहीं है ना कि मैं ही अभिमन्यु की पत्नी हूँ और दादी की बात भी तुम लोग नहीं सुन रहे हो? तो ठीक है, अभिमन्यु को बुला लो। अगर किसी ने भी दादी के साथ कुछ भी किया तो फिर अभिमन्यु तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आज इशिका ने बिना डरे सबके सामने ये कह दिया था कि हाँ, वही अभिमन्यु की पत्नी है और किसी की हिम्मत है तो वो उसे हाथ भी लगा कर दिखा दे, क्योंकि अभिमन्यु के होते हुए पूरे राजवंश पिला में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इशिका और दादी के साथ कुछ कर सके। वही नक्श, आयशा और उर्वशी हैरानी से इशिका को देखने लगे। उसने अभी अभी खुद को अभिमन्यु की पत्नी बताया था।